हरे कृष्णा। दिस क्लास ऑन श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो 14 चैप्टर श्लोक नंबर 37 एंड 38 गिवन इन फरीदाबाद टेंपल ऑन 27 अक्टूबर 2016 बाय मायसेल्फ प्रशांत मुकुंद दास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत् सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भक्ति नष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध के 14वें अध्याय का 37 और 38 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। 37 में तात्पर्य नहीं है इसलिए खाली इसको पढ़ेंगे, बाकी 38 श्लोक हम सब पढ़ेंगे साथ में। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्य अशीषं लोक्याम् अशासनं प्रविपातिम् निवृत्त संध्या नियमो भार्यम अहा प्रजापति। मैत्रेय ने कहा, तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया जो इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है। वह समझ गई कि उन्हें संध्या कालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा है, फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। कश्यप उवाच अप्रत्यात् आत्मनोस्तये दोषात् मुहूर्तिकात् मन्निदेशातिचारेण देवानां जातिहेलनात्। कश्यप उवाच अप्रायत्यात् आत्मनस्ते तो दोषात् मुहूर्तिकातुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलना। कश्यप उवाच अप्रात्यात् आत्मनस्ते दोषात् मुहूर्तिकात्पुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलना। अप्रत्यात् आत्मनस्ते दोषात् मुहूर्तिकात् मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलना। इसका अनुवाद पढ़ेंगे। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारा मन दूषित होने मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा की जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थीं। तात्पर्य बहस डिवाइन श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की। समाज में अच्छी संतान पाने के लिए शर्त है कि पति धार्मिक तथा कर्म कांडी नियमों में अनुशासित हो और पत्नी पति परायण हो। भगवद गीता में कहा गया है कि धार्मिक नियमों के अनुसार संभोग कृष्ण भावना मृत का स्वरूप है। संभोग करने के पूर्व पति तथा पत्नी दोनों को अपनी मानसिक स्थिति, काल विशेष, पति निर्देश तथा देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता पर विचार करना चाहिए। वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होता है जो गर्भाधान का समय कहलाता है। दिति ने शास्त्रीय आदेश के सभी नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए शुभ संतान पाने के हेतु अति उत्सुक होने पर भी उसे ये बताया गया कि उसकी संतानें ब्राह्मण के पुत्र होने के योग्य नहीं होंगी। यहाँ पर स्पष्ट संकेत है कि ब्राह्मण का पुत्र सदैव ब्राह्मण नहीं होता। रावण तथा हिरण्यकश्यपु जैसे पुरुष वस्तुतः ब्राह्मणों से उत्पन्न थे, किंतु उन्हें ब्राह्मणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इनके पिताओं ने उनके जन्म के लिए विधि विधानों का पालन नहीं किया था। ऐसी संतानें असुर या राक्षस कहलाती हैं। पूर्व काल में अनुशासन विधियों की लापरवाही से केवल एक या दो राक्षस थे, किंतु कलयुग में तो यौन जीवन पर कोई अनुशासन है ही नहीं, तो फिर कोई अच्छी संतान की आशा कैसे कर सकता है। निश्चय ही अवांछित संतान समाज में सुख का स्रोत नहीं हो सकती, किंतु कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ईश्वर के नाम का उच्चारण करने से वे मानव स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं। मानव समाज के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का ये अद्वितीय योगदान है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपं कदामयं ददाति स्वप्तकान्तिकम्। वन्देहां श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामे इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम इस भगवत श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद और 14वें अध्याय का 38वां श्लोक, जिसमें कश्यप जो है वो अपनी पत्नी दिति से बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं इसमें, कश्यप उवाच अप्रायत्यात् आत्मनस्ते दोषात् मुहूर्तिकातुद मन्निदेशति चारेण देवानां चति हेलनात्। हम तो विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारा मन दूषित होने, मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने और मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा अपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं के अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ हैं। तो श्रीमद् भागवतम में पूर्ण ज्ञान दिया गया है। श्रील प्रभुपाद 1975 में दिल्ली में एक बार उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो प्रेस रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि कैसे आप बोलते हैं कि हमारे शास्त्र वो साइंस से भी ज़्यादा पूर्ण है, आपकी साइंस तो अभी वो समुद्र के किनारे का एक कण भी नहीं ढूंढ पाई है और समुद्र में जितनी रेत होती है किनारे पे वो कहें तो हमारे शास्त्र है। खुद वेद व्यास जी के जीवन को अगर हम देखें तो वेद व्यास जी ने अपने जीवन में तकरीबन 1 करोड़ के करीब को श्लोक लिखे हैं। आप सोचिए श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और ऐसे 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, वेदांत सूत्र, अनेकों ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो हमारा शास्त्र में जितना ज्ञान है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इतना ज्ञान साइंस सोच भी नहीं सकती। तो अब उसमें एक भक्त बताते हैं कि जैसे साइंस हम देखते हैं ना, SCIENC साइंस, इस साइंस में से आई को निकालो, आई मीन्स अहंकार, तो क्या बचता है? SCENC सेंस। आज हमारा समाज सेंस लेस है क्योंकि वो साइंस के अनुसार जीवन को चलाने का प्रयास करता है। 2 और 2 4 होते हैं ये आर्यभट्ट ने कहा, वो मंजूर है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ये वेद व्यास जी ने कहा, तो कहते हैं ये तो इंसान ने कहा है, जबकि वो जानते नहीं खुद वेद व्यास भगवान के 6 प्रकार के अवतारों में से शक्ति आवेश अवतार है। जैसे भगवान गुण अवतार लेते हैं, 24 प्रकार के लीला अवतार लेते हैं, मनवंतर अवतार लेते हैं, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, अनेकों अवतार और शक्ति आवेश अवतार, जैसे नारद मुनि शक्ति आवेश अवतार हैं, ऐसे वेद व्यास भगवान की शक्ति को ग्रहण करके उन्होंने शास्त्रों की रचना करी है। और स्वयं भगवत गीता तो भगवान के मुखारविंद से निकली है, उस पर भी डाउट करते हैं लोग। आर्यभट्ट इंसान है, उस पर डाउट नहीं करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको बताना चाहिए कि हमारे जो श्रीमद् भागवतम है ये स्वयं भगवान ने कहा। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग का समाप्ति पर बलका तीर्थ से वापस अपने गोलोक धाम जा रहे थे तो 2 भक्त वहां पर विराजमान थे, उद्धव जी और मैत्रेय मुनि। तो मैत्रेय मुनि और उद्धव जी थे, उन्होंने पूछा कि भगवान आपके वापस भगवत धाम गोलोक धाम चले जाने के बाद में धर्म किसकी शरण ग्रहण करेगा? तो भगवान के बारे में वर्णन आता है कि भगवान ने कहा कि स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में मैं अपने आप को क्या कर दूंगा, परिवर्तित कर दूंगा। तो जो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं वो देखा जाए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के 12 अंगों का वर्णन करते हैं। जितने 10 विषयों के बारे में वर्णन श्रीमद् भागवतम में है इतना वर्णन और किसी ग्रंथ कहें, किसी शास्त्र कहें या फिर किसी भी बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है आज। और अगर आप देखें तो एक बार एक डॉक्टर से डिस्कशन हो रहा था, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उनको श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के बारे में जब बताया तो वो हैरान है देख करके कि इतना कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है जो उनकी गायनेकोलॉजी साइंस के अंदर भी नहीं पढ़ाया जाता, इतनी मोटी बुक है लेकिन उसके अंदर भी उनको मालूम नहीं है कि जो माँ के गर्भ में है वो पुत्र है या पुत्री है, लेकिन भागवत जो है वो देख करके, और मैंने ट्राई भी किया कई बार, बता देते हैं देख करके माता जी आपके ना पुत्र होने वाला है, ऐसे करके बता सकते हैं आप। और फिर बाद में 3-4 महीने बाद वो बताते हैं हाँ बिल्कुल सही आप बोल रहे थे ऐसा है, और कई भक्तों का अनुभव है अपने जीवन में। तो भागवत के अंदर ऐसे ज्ञान है, इसमें कोई अल्ट्रासाउंड साइंस की आवश्यकता नहीं है, ये भागवत का गुण है। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो हैरान थी देख करके कि इसमें इतने सूक्ष्म विषय दिखाया है कि पहले दिन से जिस प्रकार से एक पुत्र या पुत्री संतान उत्पन्न होना शुरू करती है, आत्मा जैसे शरीर धारण करती है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है कि 8-9 महीने में पूरा इंसान बन जाता है, इसके बारे में पूरा वर्णन सूक्ष्मता से दिया हुआ है। वो लोग तो समझते हैं 3 महीने का जब बन जाता है उसके बाद जाकर के आत्मा उसमें प्रवेश करती है, तब उसमें कुछ चीज आ जाती है। तो साइंस में आई आता है इसलिए अहंकार आता है, और अहंकार के कारण वो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जो स्वीकार करते हैं वो पूर्ण रूपेण सच्चे भक्त बन जाते हैं, फिर उनमें सेंस आ जाता है, क्योंकि आई चला जाता है तो सेंस आ जाता है, उनमें बुद्धि आती है कि किस प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करनी है। तो भगवान के बारे में आता है कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सहा कलो नष्ट दृशमेशा पुराण को अधुना अधुनिदिता। पुराण के रूप में भगवान ने अपने आप को परिवर्तित किया। धर्म जब भगवान थे तब तो भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूं या मैं अपने भक्तों को भेजता हूं, लेकिन जब भगवान चले जाते हैं तो फिर कौन धर्म के शरण में जाएगा, तो धर्म आता है श्रीमद् भागवत की शरण में स्वयं। इसके बारे में पद्म पुराण के अंदर वर्णन है, कहते हैं भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नायहम सूतम पापम पराधीनेर आत्मगता तु ते कृतः। सोचिए इतना सुंदर श्लोक कह रहे हैं भारते मानवम जन्मम, सबका जन्म भारत में हुआ है कि नहीं, यहाँ पे जो बैठे हैं हो सकता है बाहर हुआ हो, लेकिन हमारे सबसे भारत में, तो भारत है मानवम जन्मम, सबका जन्म जिसका भारत में हुआ है, प्राप्य भागवतम नायम, अगर उसने भागवत को प्राप्त नहीं किया, श्रीमद् भागवत का श्रवण अध्ययन नहीं किया तो क्या है पता है, सूतम पापम पराधीने, वो पाप का गुलाम बन जाएगा, पाप का गुलाम। आज हर जगह पाप ही पाप है कलयुग में, अगर आप गूगल में सर्च करें पुण्य शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए तो पता क्या लिखते हैं, नो वर्ड अवेलेबल फॉर दिस। कल ही ट्राई किया था मैंने, कल शाम को किसी से चर्चा हो रही थी, पुण्य डालो तो उसमें आता है नो वर्ड अवेलेबल फॉर दिस, आप देखिएगा कुछ ट्राई करके, मतलब हैरानी होती है कि जो इंग्लिश शब्द है उसमें पुण्य नाम ही नहीं है, उसमें क्या है पाप डालो तो सिन आता है। और इसीलिए जो आज संसार मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट है ना, दवाइयां खाते हैं मेडिसिन, उसमें भी सिन आता है, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन माइसिन मेरा पाप खा रहा हूं, पेंटोमाइसिन अपना पाप खा रहा हूं, तो पाप 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 ही बढ़ोतरी हो रही है इस समय, कलयुग बढ़ने से पाप बढ़ रहा है। और भागवत की शरण को ग्रहण नहीं करेगा तो व्यक्ति जानेगा ही नहीं कि सही मायने में भक्ति क्या है, अच्छे कर्म क्या है। लोग समझते भंडारा कर दो यही पुण्य कर्म है, और वो विदेशों में तो वो भी नहीं मालूम पुण्य कर्म क्या है, वो तो सिर्फ पाप को ही जानते हैं। हाँ तो आप सोचिए ये लिखा है इसमें कि वो पाप का गुलाम बन जाता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु ने हमको सरलता से किसका गुलाम बनना सिखाया, कृष्ण का। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर अनित्य दास, बस भगवान कृष्ण के दास बनना है, और लोग कृष्ण को छोड़ करके किसके दास बनते हैं, पाप के दास। कह रहे हैं सूतम पापम पराधीनेर, पराधीन हो जाता है व्यक्ति उस पाप के, आत्मगता तूते कृता, और आत्मगता मतलब वो क्या करता है, आत्मा का हनन करता है। सोचिए जो भागवत का श्रवण नहीं कर रहा पढ़ नहीं रहा वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आत्महत्या सुसाइड। वैसे तो आत्मा की हत्या नहीं होती है, ना जायते मृयायते वा कदाचिन बोला गया है गीता में, ना जन्म लेती है आत्मा ना मरती है, लेकिन अगर वो भागवत नहीं पढ़ती तो एक प्रकार से दूसरे शरीर में प्रवेश करना एक प्रकार से क्या है, आत्मा का हनन करना ही है। वापस इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में आना मतलब समझ लीजिए आपने आत्मा का हनन किया, वरना आत्मा ऊपर जा सकती थी भगवत धाम, वो नीचे की योनि में या नीचे की शरीरों में प्रवेश कर रही है, इसका मतलब हमने आत्मा का हनन किया। एक प्रकार से हनन करना है। तो आत्मगतः तू ते कृतः, जो भागवत नहीं पढ़ता उसके बारे में वर्णन है ऐसा। तो हर एक व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और इसके अंदर, इसी श्लोक के अंदर वर्णन है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को धर्म परायण होना चाहिए। आज समाज में पति पत्नी तो हैं, लेकिन धर्म पति या फिर धर्म पत्नी नहीं है। पति भी धर्म पति होता है, ये मत समझिएगा खाली पति मतलब पति होता है, धर्म पति होता है। तो शास्त्र में वर्णन है धर्म पति या धर्म पत्नी का मतलब जो एक दूसरे को धर्म परायण होने में मदद करे। पति जा रहा है भक्ति करने के लिए तो पत्नी कहती है जी कहाँ जा रहे हैं आप, हैं हरे कृष्णा ज्वाइन कर लिया आपने, हमारा तो जीवन ही खराब हो गया, वो कौन सा दिन था जब आपने ये संस्था ज्वाइन कर ली, ऐसे करके बोल रही है। या पति बोलता है कहाँ जाती हो तुम, मुझे पता है ये सब लोग क्या चाहते हैं, पैसा चाहते हैं हमारा, इस तरह से जो वार्तालाप हो रही है ये धर्म पति पत्नी नहीं है, पति पत्नी है। धर्म पत्नी हो या धर्म पति हो उसका अर्थ है धर्म परायण होना, एक दूसरे की मदद करें। पति पत्नी एक दूसरे की सहायता करें कि कैसे अब भक्ति में, कैसे भगवान की सेवा में ज्यादा से ज्यादा आरुण हुआ जा सके। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो ये पति पत्नी अगर धर्म परायण होंगे तो बच्चे कैसे होंगे, धर्म परायण होंगे, क्योंकि वो अपने सारे नियमों को अड़िगता से पालन करेंगे। इसलिए भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा कि काम को अगर आप मेरे समर्पित करते हैं तो एक प्रकार से प्रसाद बन जाता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गर्भाधान संस्कार जैसा इस श्लोक में वर्णन है पूर्ण रूपेण उसका पालन करे तो सही महीने में वो एक प्रकार से भोग ऑफरिंग है मेरे को। ये नहीं है कि पति पत्नी का विवाह हुआ तो इंद्र तृप्ति के लिए, पुत्र या पुत्री संतान उत्पत्ति अगर कोई व्यक्ति करता है भगवान की सेवा में लगने के लिए, कृष्ण परायण होने के लिए, तो वो व्यक्ति सही मायने में भगवान को भोग ऑफरिंग कर रहा है। और अगर दोनों पति पत्नी सही मायने में बच्चे को कृष्ण भावना भवित बनाने के लिए तैयार ना हो तो फिर उस व्यक्ति को, उन दोनों को निर्णय लेना चाहिए कि हम ऐसे ही ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करेंगे, क्योंकि हम इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि बच्चों को क्या बना सके, कृष्ण भावना भवित बना सके, तो फिर उस तरह गलत हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मैरिज इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। विवाह करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर जो निर्भर है वो उन लोगों को भक्त बनाना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे अगर किसी गुरु के शिष्य हो तो शिष्य को, गुरु की जिम्मेदारी है कि शिष्य को कृष्ण भावना भवित बनाए, और अगर वो नहीं बनाते हैं तो फिर वो बेकार है, गुरु बनना या फिर शिष्य बनना, दोनों तरह से। इसी तरह से अगर पुत्र या पुत्री कृष्ण भावना भवित नहीं, आप कई बार सुन चुके हैं, तो वो बेकार है। तो इसलिए यहां पर वर्णन है कि उस समय सारे ही अशुभ लक्षण प्रकट थे। तो गर्भाधान संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत जोर देते थे जिसका भी विवाह होता था, वैसे तो सन्यासी से ये उपेक्षा नहीं की जाती कि वो यज्ञ कराए विवाह के, लेकिन क्योंकि श्रील प्रभुपाद विदेशों में प्रचार करके ये स्थापित करना चाहते थे कि जो गर्भाधान संस्कार है बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे आने वाला समाज जो होगा सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो कैसे होने चाहिए, सब कृष्ण भावना भवित होने चाहिए। तो उसका मूल सिद्धांत है कि जब किसी का विवाह हो तो भक्तों को जबरदस्ती जाकर के उनको सिखाना चाहिए, कहीं वो भूल गए हो तो उनको याद दिलाना चाहिए कि सही मायने में गर्भाधान संस्कार क्या है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ नियम बताए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप में। हाँ, उसमें श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इन दिनों पर श्री श्री राधा गोविंद भगवान सीताराम लक्ष्मण मोहन गौर ने श्रील प्रभुपाद की जाए। तो उसमें से गर्भाधान संस्कार के नियम है कि दोनों का जब विवाह हो, विवाह होने के बाद में पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को कृष्ण भावना भवित बनाए पति पत्नी, इससे पहले कि वो विचार करें कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं कि हम पुत्र करेंगे या पुत्री करेंगे या संतान करेंगे, तो उससे पहले उनको नियम कृष्ण भावना भवित के नियमों का अधिकता से पालन करना है। और कुछ दिनों को बताया गया है कि इन दिनों पर अगर पति पत्नी असंग प्राप्त करते हैं तो वो अशुभ दिन बताए गए हैं। जैसे दिन बताते हैं एकादशी व्रत का दिन, त्रयोदशी ये भगवान का भक्ति के दिन है। पूर्णमासी अमावस्या, अमावस्या इसलिए मना किया कि जैसे इसमें हो रहा है भूत प्रेत आदियों का घूमना होता है। अभी दिवाली के दिन 3-4 दिन बाद देखेंगे अमावस्या में जितने तांत्रिक ब्लैक मैजिशियंस हैं सारे पहुंच जाते हैं शमशान घाटों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो वो कंट्रोलर बनना चाहते हैं जबकि कंट्रोलर तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो इस तरह से इन दिनों पर संग करना मना किया गया। या फिर पति पत्नी की चेतना अब दूषित हो या वो शारीरिक रूप से कमजोर हो, बीमार हो, और साथ में संध्या का समय 9 बजे से पहले, रात्रि के 9 बजे से पहले संध्या समय जो चलता है, जब हम गौरा आरती करते हैं, भगवद गीता क्लास करते हैं, दीपदान करते हैं, ये समय अपवित्र है। तो ये नियम बताए गए गर्भाधान संस्कार के, और समय बताते हैं कि जो समय सही है वो है 9 से 12, इसके बीच में गर्भाधान किया जा सकता है। संस्कारों के बताया गया सूची में कौन से स्थानों पर हमें गर्भाधान संस्कार नहीं करना चाहिए। स्थान बताए हैं, मंदिर का प्रांगण नहीं होना चाहिए, मंदिर के आसपास तीर्थ स्थान नहीं होने चाहिए, शमशान घाट आदि नहीं होने चाहिए, और यहाँ पर दूसरे वैष्णव रहते हों वहां पर, या फिर किसी पवित्र वृक्ष के आसपास जैसे तुलसी आदि, पीपल, गौशाला के आसपास, और या फिर और यहाँ तक कि किसी जल आशय के पास पे भी नहीं होना चाहिए। अगर गर्भाधान संस्कार हो तो उस समय जो स्त्री है उसको 1 दिन तक अपने घर का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्माएं, अभी हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा इसी अध्याय में कि आत्माएं देखती हैं 9 द्वार जब खुले हैं, ये इस शरीर में 9 द्वार है ना, 9 गेट्स, 9 द्वारों का पिंजड़ा, रहता पक्षी कौन, इसमें आत्मा रहती है पक्षी रूप में। तो इस 9 द्वार, 2 आंखें हैं, 2 नथुने हैं, 2 कान, मुंह, हमारी जनेन्द्रियां, उनके द्वारा जब उनकी उनकी स्थिति कमजोर होती है तो ऐसी अवस्था में प्रेत आत्माएं जो घूम रही, जिन्हें शरीर चाहिए वो उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, उन्हें योनि चाहिए। तो इस तरह से बताया गया है कि हमें गर्भाधान संस्कार को बहुत ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए। ये कोई विवाह कर लेना या इंद्र तृप्ति कार्यों में मग्न हो जाना ये बताया नहीं गया है। तो एक ग्रस्त जीवन को निभाना ये ब्रह्मचारी जीवन निभाने से भी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि इस जीवन में आपको कई लोगों को कृष्ण भावना भवित बनाने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर होती है। तो ये इतना कोई सरल नहीं है, घर की जीविका को भी पालन करना, कृष्ण भावना भवित पुत्र पुत्री अब परिजन भी बनाना, और साथ में भगवान की सेवा में भी लगना, प्रचार भी करना। तो ग्रस्त जीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बताते हैं इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे मुख्य जो चीज है वो क्या है, स्टेट ऑफ माइंड, हमारी चेतना कैसी है। और चेतना बढ़ाने का सरल उपाय श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे कार्तिक महीना चल रहा है, इस कार्तिक मास आदि में कुछ विशेष दिनों में ध्यान पूर्वक जप करे तो अपनी चेतना को ऊपर ला सकता है। श्रीमद् भागवत का श्रवण करे ध्यान पूर्वक। एक भक्त पूछ रहे थे, बोले कि प्रभु जी मैं जब रात को सोता हूं ना तो आजकल मुझे ना हरे कृष्ण चलता रहता है मन में, हरे कृष्ण बहुत अच्छा। मैंने कहा आप तो बहुत उत्तम स्थिति में, कह रहे अच्छा क्यों। मैंने कहा आप लोग निद्रालय में भी जप करते हो, हम लोग जपालय में भी नींद लेते हैं, जब हम जप करते तो हम नींद आती है हमको, तो आप तो ऊंची स्थिति में हो कि आप सोते सोते जप करते हो, हम जप करते करते सोते हैं। तो वो स्थिति है चेतना की, स्टेट ऑफ माइंड, कि जब व्यक्ति सोए भी तो उसको दर्शन हो भगवान का, उसको दर्शन हो गुरुजनों का, उसको हरे कृष्ण मंत्र श्रवण हो, उसको वाइब्रेशंस आए हरे कृष्णा, वो जिस कमरे में सो रहा है उस कमरे में हरे कृष्ण कीर्तन सदा चल रहा है, श्रील प्रभुपाद जी की आवाज में भक्तों के प्रवचन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहा है हल्की आवाज में, वहाँ वाइब्रेशन ऐसी रहेंगे, आप सोएंगे तो आप समाधिग्रस्त होंगे। और अगर सही मायने में आप टेलीविजन की हाई स्पीड और कॉमेडी चैंपियन और ये सब देख करके सोएंगे तो आपको रात में भूत प्रेत के सपने आएंगे। लोग आकर बाद में पूछते हैं, क्लासेस जब हम देते हैं तो लोग आके पूछते हैं कि मुझे बड़े बुरे सपने आते हैं, मैं तो कुछ गलता नहीं हूँ, क्योंकि हमारी क्रिया ऐसी है, उसकी प्रतिक्रिया है, फॉर एक्शन रिएक्शन, जैसा करेंगे वैसा होगा। तो सोती हुई अवस्था हमें लगता है हम सो रहे हैं, लेकिन सही मायने में हमारी आत्मा हमेशा चेतन रहती है, आत्मा नहीं सोती है, ना आत्मा मरती है, ना जगती है, ना सोती है, वो कुछ नहीं, ना बीमार पड़ती है, जो सब कुछ है वो इस शरीर के साथ है। तो अगर देखें तो आत्मा के ऊपर मन बुद्धि अहंकार हम सुनते हैं सूक्ष्म शरीर है, आत्मा और सूक्ष्म शरीर के बीच में एक चीज रहती है उसे क्या बोलते हैं? चेतना। मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर जिसे लिंग शरीर कहते हैं उससे पंच भौतिक शरीर को अगर कनेक्ट करना हो तो उसके बीच में क्या रहती है? क्या रहती है? चेतना नहीं रहती। चेतना तो लिंग शरीर के अंदर है, बाहर रहती है प्राण वायु, पांच प्रकार की वायु है, अपान, उदान, समान। तो पांच प्रकार की वायु में ये जो चेतना है तैरती है, भगवद गीता के अंदर वर्णन है सेकंड चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में, तो ये इस प्रकार से पांच प्रकार के प्राणों में, और उन प्राणों को जागृत करने का तरीका क्या है कि व्यक्ति जो है वो प्राणायाम करता है। लेकिन प्राणायाम करने से वो खाली कहां तक जा सकती है? तो खाली सूक्ष्म शरीर के बाहर बाहर के स्तर तक ही हम प्योर कर सकते हैं। लेकिन हमें चेतना को अगर प्योर करना है, मन बुद्धि अहंकार के अंदर के हिस्से को भी प्योर करना है, तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा एक ही तरीका है कि जप को ध्यान पूर्वक करने में खाली ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूं सुन रहा हूं, मेरी बैठने की स्थिति, मेरे श्वास लेने की स्थिति, मेरे जप माला पकड़ने की स्थिति, मेरे मन की स्थिति। इसीलिए आप देखिए कई मंदिरों में जप करने से पहले 5 मिनट जप की महिमा बताई जाती है। जप की महिमा, एक तो होता है 10 नाम अपराध पढ़ना, लेकिन एक जप की महिमा, रोज हरि नाम कोटेशंस में से कोई एक कोटेशन पढ़े, उससे क्या होगा हमारी चेतना बनेगी कि अब मैं 16 माला जब जप करने जा रहा हूं तो किस मानसिकता से करना है। वरना क्या होता है, हम थके आ रहे होते हैं, रात को मंगला आरती उठना है, कार्तिक नियम पालन करना है, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, दीप दानम, जल स्नानम सब करना है मुझे, तो जल्दी 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 व्यक्ति करता है तो जब जप का टाइम आता है तब तक वो निद्रालय में वापिस आ जाता है अपने, और फिर जब बड़ी ही खराब स्थिति में, और ऐसा रहेगा तो ना तो प्राणवायु सूर्यदेगी, इसीलिए भक्त बीमार भी रहते हैं क्योंकि वो सोचते नहीं है कि जपा ही, प्रभुपाद जी ने बताया तगड़ी वाइब्रेशंस, जैसे श्वास लेते हैं प्राणायाम में से, जप करते वक्त अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक जोर से, अगर नींद आती है तो उसे जोर से उच्चारण करना चाहिए, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो आपने उदाहरण देखा कि अगर मन की चेतना, स्टेट ऑफ माइंड, मानसिकता, मनोधारणा अगर शुद्ध नहीं है, तो यहां पर वर्णन है रावण और हिरण्यकश्यपु जैसे, हिरणाक्ष जैसे पुत्र की उत्पत्ति होती है अगर मन की दशा ठीक नहीं है तो। सोचिए ये सब कुछ गर्भधान संस्कार पर निर्भर है। और फिर व्यक्ति जब एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद आप कोशिश करते रहो तो व्यक्ति बनता है, लेकिन जो एक प्रहलाद जैसा भक्त बन सकता है वो बहुत मुश्किल है। आप देखिए राक्षस, इसमें माँ बाप का भक्त होना भी जरूरी नहीं है। हिरण्यकश्यप जो है वो भक्त नहीं है, वो विष्णु का दुश्मन है। तो बता रहा है कि अब मैं जो हूं विष्णु मेरा दुश्मन है, और उसके लिए तपस्या करने कहां जा रहे हैं? जंगलों में। और जंगलों में जाकर के रोज ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर अपने शरीर को इतना शक्तिशाली बनाना चाहता है कि कोई मुझे मार ना सके। लेकिन भगवान पहले से ही जान जाते हैं भक्त के मन में क्या चल रहा है। 2 चिड़िया को भेज दिया, पैरट्स, तोतों को, और कहा जाकर के इसकी मानसिकता बदल दो और कुछ नहीं करना। हाँ, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि ये जो युग है ये मानसिकता की लड़ाई है, इसमें शारीरिक बल ना दिखाना है ना कुछ करना है, सबके मानसिक मानस पटल को बदल दो तो बस अपने आप वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। तो ये मानसिकता की लड़ाई है। तो उसने 2 चिड़िया जाकर के, जहां वो बैठकर हिरण्यकश्यपु समाधिग्रस्त था, क्या बोल रही थी? नारायण नारायण नारायण। और वो जप कर रहा है ओम ब्रह्माय नमः, और कान में आ रहा है नारायण नारायण नारायण। तो आप सोचिए कुछ भक्त हैं वो जाते हैं जप करते हुए कार के अंदर, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस का ड्राइवर जो है या 4-5 लोग उन्होंने FM चला रखा है, अब कान में जा रहा है FM और हम कर रहे हैं जप। तो जिस प्रकार से हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की प्रार्थना कर रहा था और कान में क्या पढ़ रहा था? नारायण। उस नारायण नारायण पढ़ने से उसकी चेतना बदल गई। और ऐसे ही जो व्यक्ति FM का गाना उसके कान में चला जाएगा या बाहरी बातें उसके कान में चली जाएंगी तो क्या होगा? उसकी चेतना भी बदलेगी। कृष्ण भावना भवित होने की जगह कुछ और ही हो जाएंगे हम लोग, कलयुग भावना भवित बन जाएंगे हम लोग। तो हमें देखना है हमारा टारगेट क्या है, कि हम सही मायने में भगवान की, ये हम समझ गए हमारी स्थिति क्या है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, दास बनने में हमें है कि नहीं कुछ फायदा, समझ पा रहे हैं कि नहीं उस महिमा को। जब हरि नाम ही सब कुछ है तो भागवतम क्यों, जब हरि नाम ही सब कुछ है तो भगवत गीता क्यों, जब हरि नाम ही सब कुछ है लेकिन हरि नाम सब कुछ है ये विश्वास दिलाने के लिए भागवतम है। ये विश्वास ही नहीं होता व्यक्ति को, हरि नाम ही सब कुछ है ये विश्वास नहीं है। जिस दिन विश्वास होगा उसका उसका वो जो स्तर है जप का वो बहुत अलग होगा, उसको आनंद का अनुभव होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, हाँ, यू पीपल चैंट बिकॉज यू हैव टू चैंट, आई चैंट बिकॉज आई लव टू चैंट। आप लोग जपते हैं क्योंकि आपको जपने के लिए बोला गया है, लेकिन मैं जपता हूं क्योंकि मुझे जपने से प्रेम है, जपना अच्छा लगता है। तो हमें अच्छा ही नहीं लगता, अगर अच्छा लगेगा तो व्यक्ति को हरि नाम इतना आनंद प्रदान करता है, वो अंश मात्र में कभी कभी अनुभव होता है किसी एक आध मन के पे, वरना अधिकतर तो हम भागवत सुने तो अभी नींद में रहते हैं, जब करें तब भी नींद में रहते हैं, हमेशा नींद में ही रहते हैं हम लोग। नींद से निकालना ये बहुत बड़ी एक बन गया है, क्या कहते हैं, पहेली, कैसे नींद से बाहर निकले। और कृष्ण भावना भवित, जब वो पुत्र नहीं उत्पन्न करना चाहता था हिरण्यकश्यपु, क्या चाहता था, मेरे घर में एक राक्षस असुर पैदा हो, मैं असुर वर्यम हूँ, बेस्ट हूँ, और तुम असुर मेरे घर में आना चाहिए और वो भी असुरों में श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन अपनी पत्नी के साथ जब वो गर्भाधान संस्कार कर रहा था तो उसने क्या सोचा, वो संस्कार नहीं था एक्चुअली सही मायने में, वो दुष्प्रेरित था। अब वो सोच रहा था कि मैं जो हूं क्या कर रहा हूं, इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, लेकिन सही मायने में उसकी चेतना नारायण नारायण श्रवण करने से इतनी परिवर्तित थी कि वो गर्भाधान संस्कार कर रहा था, उसे मालूम भी नहीं था। और जब बीज आरोपित हुआ तो कयादु के गर्भ में कौन प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज। सोचिए आप, इनके चार भाई थे, संहाद, अनुलाद, हरलाद, प्रहलाद, और इनकी एक बेटी भी पैदा हुई बाद में सिंहिका। लेकिन जो प्रहलाद जैसे भक्त बने वो और किसी की इतनी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि उस समय जो चेतना थी वो इंपॉर्टेंट थी। अब देखते कई भाई बहनों में फर्क है, एक भक्त बन रहा है एक नहीं बन रहा, एक समझ रहा है ज्ञान को एक नहीं समझ रहा, क्योंकि माता पिता की स्थिति अगर पीछे जाकर चेक करें, उस समय कुछ रिसर्च करें तो पता चलेगा कि उस समय जैसी स्थिति थी वैसा दिखता है व्यक्ति के अंदर, क्योंकि देवी देवता भी प्लान करते हैं कौन से बीज को कहाँ आरोपित करना है। पुरुष के वीर के अंदर स्थापित कर माता के गर्भ में स्थापित करना है, ये सब प्लान होता है। नथिंग बाय चांस, कोई ऐसे ही नहीं हो जाता, अरे हमारे घर में तो ऐसा राक्षस पैदा हो गया, नहीं, वो सब कुछ निर्णायक है, जैसे कर्म वैसी प्रतिक्रिया मिलेगी आपको। तो इस तरह से अब प्रहलाद जो थे वो सही मायने में उस समय हिरण्यकश्यपु की चेतना बड़ी उत्तम थी, उसने नारायण नारायण और बार बार बोल रहा था अपनी पत्नी को, आज मैं बड़ा दुखी हूं, गया था ब्रह्मा की तपस्या करने पर बार बार मेरे मानस पटल पे नारायण नारायण का चिंतन चल रहा है, मेरा विष्णु जो दुश्मन है उसका नाम क्यों आ रहा है बार बार, और उठकर चला आया था वहां समाधि से, कहा नहीं आज नहीं अब किसी और दिन जाऊंगा, और फिर बाद में दोबारा गया, उसे पता नहीं था कि प्रहलाद को तो जन्म दे चुका है। दोबारा गया, तपस्या करी, हाँ, और क्या मांगा कि मुझे कोई ना मार सके, ना बाहर ना अंदर, वो आप सब लीला जानते हैं। और फिर बाद में भगवान नरसिंह ने आकर के उनको मारा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो ऐसा भक्त प्रहलाद प्रकट हुए, बाद में उनके घर में प्रहलाद के अब पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र बलि हुए, वो भी बड़े भक्त बने। तो इस तरह से एक भक्त बन जाने से कहते हैं त्रिशतम 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, सात माता की साइड, सात पिता की साइड, सात आने वाली जनरेशन। लेकिन एक प्रहलाद जैसा शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त प्रकट करने के लिए जिम्मेदारी किसके पास है, ग्रस्त व्यक्ति के पास में है। वो ग्रस्त व्यक्ति एक शुद्ध भक्त प्रकट कर सकता है। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वो भगवान से प्रार्थना किए कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो पूरे विश्व में आपका नाम स्थापित कर सके भगवान। तो उनके घर में विमल प्रसाद प्रकट हुए, विमला देवी की कृपा से उन्होंने प्राप्त किया, विमल प्रसाद नाम रखा। बाद में जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बने, स्वयं प्रभुपाद जी के गुरुदेव, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, संन्यास धारण किए, पूरे विश्व को सूर्य सिद्धांत प्रदान किए। ऐसे लोगों के लिए माता पिता पर बहुत जिम्मेदारी है। भक्ति सिद्धांत महाराज के और भाई बहन भक्त थे, लेकिन उनका नाम नहीं है, उन्होंने इतना स्थापना नहीं करी धर्म की स्थापना जितनी की भक्ति सिद्धांत महाराज ने करी। क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि मैंने भक्ति सिद्धांत विमल प्रसाद को प्राप्त करने के लिए जगन्नाथ से बहुत प्रार्थना करी कि एक पुत्र चाहिए। प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए वो भी गर्भाधान संस्कार में बताया गया कहते हैं देवकी सुतम गोविंदा वासुदेवा जगतपते देहि मे तन्यम कृष्णा त्वाम अहम शरणम गतः। ये प्रकार की प्रार्थना बोलनी चाहिए, मैं आपकी शरण में आया हूं देवकी सुतम गोविंदा, हे देवकी के पुत्र गोविंद वासुदेवम जगतपते, आप वासुदेव इस जगत के पालनहार हैं। देही में तन्मय कृष्णा, मुझे ऐसे पुत्र दो जो कि आपका स्वरूप हो। देही में तन्मय कृष्णा त्वाम अहम शरणम गतः, मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसी प्रार्थना कोई व्यक्ति करे तब जाकर के वो पुत्र या पुत्री कृष्ण भावना भवित प्राप्त कर सकता है। ये नहीं कि बाद में हम प्रयास करें। श्री प्रभुपाद जी के पिता स्वयं भक्तों को सेवा करते थे, अपने घर में पुला बुला के प्रसाद खिलाते थे, उसके बाद हरिनाम कीर्तन करते थे, अपनी पत्नी को बोलते थे कि जिस समय हम इस तरह का गर्भधान संस्कार सोचेंगे तो हमें कृष्ण भावना भी धुना है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम 50-50 माला हमको जप करना चाहिए, क्योंकि जप करने से हमारी मानसिकता बदलेगी। तो यहाँ पर उसके बारे में बहुत ही अज्ञान पूर्वक बताया है। आप देखिए दिति माता के अनेकों पुत्र हुए हैं, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, और उसके बाद में ऐसा भी वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि उन्होंने कश्यप मुनि से कहा कि मुझे ना इंद्र का एक दुश्मन पैदा करना है। दिति माता ऐसी हैं, उसने बताया इंद्र का दुश्मन, क्योंकि भगवान जो है वो इंद्र आरी है ना, बोलते हैं ना कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृण्यंती युगे युगे। हर युग युग में भगवान इंद्र आरी, इंद्र के दुश्मन बनकर भगवान आते हैं। इंद्र के दुश्मन नहीं, इंद्र के दुश्मनों के दुश्मन। तो इंद्र का जो सिंहासन छीन लेते हैं, हिरण्याक्ष हो गए, हिरण्यकश्यप हो गए, और या फिर बलि महाराज हो गए, उनके लिए भगवान को विभिन्न अवतार लेने पड़ते हैं, चाहे वो अंश अवतार हो या कला अवतार, ऐसा भागवत में वर्णन है। तो इस तरह से दिति माता ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे घर में कैसा पुत्र हो जो कि इंद्र ने, इंद्र के जो आरी हैं उनके लिए मेरे घर में एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। तो उनके जो पति थे उन्होंने कहा कि आप गलत सोच रहे हैं, इंद्र के कारण हिरण्यकश्यपु का वध नहीं हुआ आपके पुत्रों का, वो तो भगवान के अगेंस्ट होगा इसलिए उनका वध हुआ। जो भगवान को नहीं मानता सही मायने में वो आत्महत्या करता है, अपनी अपने आत्मा का हनन करता है। तो उन्होंने समझाया लेकिन दिति माता मानी नहीं, उन्होंने कहा नहीं मुझे एक इंद्र का दुश्मन चाहिए। तो वो उन्होंने कहा कि देखो जो भी चाहती हो भगवान से प्रार्थना करो, पहले गलती हो चुकी अब गलती मत करो। तो उन्होंने कहा पुंसावन व्रत करो, ऐसे व्रत करने से आप भगवान के नियमों का एक वर्ष तक पालन करने से, कितना सुंदर गर्भाधान संस्कार इसमें वर्णन है भागवत में कि व्यक्ति को पूर्ण रूपेण लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, और एक वर्ष तक सही मायने में किस तरह से हमको नियमों का पालन करना चाहिए बिल्कुल दृढ़ता से, ये बताते हैं। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में आता है कश्यप ने कहा, श्री कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बंधवा संवत्सरम व्रतम इदम यदि अजो धार्यशति। पुत्रस्ते भविता भद्रा, अगर तुम्हें ऐसा पुत्र चाहिए इंद्रहा देव बंधना, कैसा होना चाहिए इंद्रहा। अब उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से संस्कृत शब्दों में परिवर्तन कर दिया, इंद्रहा, इंद्र का हा मतलब इंद्र का दुश्मन भी होता है, और इंद्र हा का मतलब क्या होता है इंद्र का सहयोगी, फॉलोवर, पालन करने वाला। तो उन्होंने कहा इंद्र हा और देव बंधवा, देवताओं का बंधु हो और इंद्र का फॉलोवर हो। अगर ऐसा पुत्र चाहती हो तो संवत्सरम व्रतम इदम, एक संवत्सर है ना, विक्रम संवत बोलते हैं ना 2000 से लेके इतने संवत्सर, तो एक संवत्सर हिंदी कैलेंडर में संवत्सर, संवत्सरम व्रतम इदम, अगर एक वर्ष तक संवत्सर व्रत करो तो क्या होगा यदि अजो धार्यशिति, तो तुम्हें तुम्हारी इच्छा का पुत्र प्राप्त होगा। अब उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया, लक्ष्मी नारायण की पूजा करी, पूरा वैसे ही धारण करना, सुबह उठना जैसे कार्तिक के नियम होते हैं, एक समय खाना, बस इसी तरह से बिल्कुल कम से कम आहार पालन करके खूब नाम जप करना, सब उन्होंने अपना पालन किया। और उसके बाद में जब इंद्र को ये पता चला तो वो बोला कि अरे भगवान तो पहले ही मेरे को, अब भगवान मेरी रक्षा करते हैं लेकिन ये दिति माता ने क्या कर दिया, मेरा दुश्मन पैदा करने वाली हैं। उसे पता नहीं था कि कश्यप मुनि पहले ही बदल चुके हैं, इंद्र हा कर दिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं क्या करूंगा, इनके इनके अगर ध्यान पूर्वक इन्होंने कहीं पर भी अपने व्रत का पालन नहीं किया, मैं वहीं पर उस पुत्र का नाश कर दूंगा। अब इस व्रत के अंदर एक नियम था कि जब व्रत करो तो व्रत को पूर्ण रूपेण तरीके से करना चाहिए। कोई भी व्रत लें, हरि नाम जप का व्रत लें, भागवत का व्रत लें, हम भागवत सुनने बैठे और सो जाएं, तो ये सही मायने में हमारे ऊपर कलयुग का प्रभाव हो जाना है। अगर नींद आती है तो खड़ा हो जाए व्यक्ति, या फिर व्यक्ति अपनी मेरु इस कमर की हड्डी को सीधा करे और ऊंची श्वास ले ले एक बार ना, तो नींद चली जाएगी। अगर उसको सच में इस व्रत को पालन करना है कि मुझे श्रीमद् भागवत श्रवण करना है, तो फिर व्यक्ति सही मायने में कोई भी गलती नहीं होगी, उसको शुद्धिकरण उसका एकदम फास्ट होगा। लेकिन दिति माता ने भी ध्यान दिया, उनके पति ने कहा था कोई गलती मत करना, लेकिन फिर वही गलती की जो पहले की थी। क्या गलती करी उन्होंने, फिर से संध्या के समय आहार कर सो गई। सोना कब चाहिए? 9 बजे के बाद, संध्या समय आरती का टाइम, संध्या आरती। उन्हें इतनी थक गई एक वर्ष व्रत करके, बिल्कुल अब समाप्त होने वाला है, और सो गई। और इंद्र ने कहा यही मौका है। उस समय सारे द्वार खुले हैं, तो उन्होंने इंद्र ने प्रवेश किया और उनके पुत्र को गर्भ में ही मार डाला, 7 भागों में बांट दिया। और उसे लगा कि अरे ये क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने पुंसावंश व्रत किया था, भगवान विष्णु का व्रत किया था, भगवान विष्णु का नाम जप किया था, उससे इतनी शक्ति हो गई थी, वो 7 भागों में बांटने पर भी 7 पुत्र बन गए। अब तो ये हैरान हो गए इंद्र कि 7 पुत्र जन्म ले लिए, मैं तो एक मारना चाहता था, तो 7 दुश्मन पैदा हो गए। तो उन्होंने फिर अपने वज्र का इस्तेमाल करते हुए 7 को 7 भागों में बांट दिया, तो कितने हो गए? 49 भागों में उन्होंने कहा ये क्या हो गया। तब वो समझे ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा जिस पर है वही इस तरह से, रक्षति ते कृष्णा ना रक्षति ते कृष्णा, हाँ भगवान ही है जो रक्षा करते हैं। हाँ तो उन्होंने कहा ये रक्षा करने वाले भगवान है, इसका मतलब ये भगवान की इच्छा से प्रकट हुए हैं, मुझे इनका वध करने का कोई हक नहीं। और वो बाहर चले गए। और फिर बाहर आके उन्होंने दिति माता से प्रार्थना करी और कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा गलती की है, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। और ये जो 49 थे ये वायु बने, मरु बोलते ना, मारुति हनुमान जी पवन पुत्र वायु, तो ये वायु 49 क्योंकि इंद्र हाथ है, इंद्र के फॉलोअर्स, तो सब जाकर के इंद्र के लोक में जाकर उनकी सेवा करने लगे, उनके उनके देव बांधवा बन गए। लेकिन उन्होंने उससे पहले प्रार्थना करी और बहुत ही सुंदर कहा आराधनम भगवतः इह मानम निराशितः ये तु न इच्छन्ति अपि परम ते स्व अर्थ कुशल स्मृतः। मैंने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर्म किया है, माता मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझा नहीं था, मुझे लगा कोई असुर है, फिर भी मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। वैष्णव का कर्म होना चाहिए कि गलती करे नहीं, लेकिन अगर करे तो इतना उसमें गट्स होने चाहिए हैं कि वो जाकर क्षमा याचना करें, मुझसे गलती हो गई मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन अगर हम अपराध करते रहेंगे और क्षमा याचना नहीं करेंगे, तो फिर हम वापस इसी जगत में असुर शरीरों में, नीचे की योनियों में वापस आने वाले हैं। चाहे कितनी भी भक्ति करें, लेकिन अपराधी व्यक्ति के लिए भगवान के धाम में कोई प्रवेश नहीं है। तो उन्होंने क्षमा याचना करी और दिति माता ने उनको कहा ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इसीलिए भागवत में वर्णन है, इस अध्याय से हमें सीखना चाहिए कि एक तो हम कोई भी पुत्र पुत्री संतान उत्पत्ति करना चाहें तो गर्भाधान संस्कार बहुत विशेष संस्कार, 16 संस्कारों में से एक प्रथम संस्कार है, और जीवात्मा का पहला संस्कार है जीवात्मा को गर्भ में धारण करना। और दूसरा ये कि हम अगर गर्भाधान संस्कार के विशेष नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो भक्त को अपनी चेतना को उच्च स्तर बनाना चाहिए, सदा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, भागवतम का श्रवण, भगवद गीता का पठन, भगवद गीता का अध्ययन श्रवण, हरिनाम जप करना, भगवान के विग्रह की घर पे या मंदिर में सेवा करना, आरतियां अटेंड करना, घर में गाना मंदिर में गाना, भगवान की मंदिर की सेवाओं में संलग्न हो जाना, पुस्तक वितरण करना, अनेकों सेवाओं में हम जुड़ सकते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए। तो इसलिए बताते हैं कि अगर आपकी कोई इच्छा, वैसे तो बिना किसी इच्छा के हमें भगवान के सेवा में लगना चाहिए, लेकिन अगर कोई इच्छा है भी आपकी, मान लीजिए कोई इच्छा है आपकी, तो किसकी सेवा करनी चाहिए? कृष्ण की। हाँ, भागवत कहती है, अकाम वा सर्व कामो मोक्ष कामा उदार धी तीव्रेण भक्ति योगे ना यजते पुरुषम परम। जो परम पुरुष है, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उन्हीं का भजन करना चाहिए, चाहे आपके मन में कोई इच्छा हो या ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अभी हम मंदिर में, उस दिन एक व्यक्ति आए, उन्होंने गाड़ी खरीदी थी नई, बोले कि आइए आइए प्रभु जी पूजा करवा दीजिए। पूजा करवा दी पुजारी से, बोले आप बैठिए पहले, आप बैठिए। मैं बैठ के क्या करूंगा भाई, आइए आइए बैठिए जरा, एक आपको राउंड कटा के लाते हैं हम। भाई अब मंदिर आते हैं, मंगला आरती आते हैं, जप करते हैं, कंठी माला धारण करते सब, और कार के ऊपर नींबू मिर्चे टांग रखा था। मैंने कहा ये क्या है? बोले प्रभु जी क्या है ना, देखो एक्सीडेंट से बचने के लिए हम भक्त हैं, मानते हैं, लेकिन अब ये छोटी मोटी सेवा में कृष्ण भगवान को थोड़ी लगाएंगे कि एक्सीडेंट से बचा लो, हम तो नींबू मिर्ची। मतलब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण पे भरोसा ना करके नींबू मिर्ची पे भरोसा कर सकता है, तो सोचिए उसकी चेतना कितने उच्च स्तर की है। वो समझा ही नहीं अभी तक, ईश्वरम परम कृष्णम सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, हर कारण का कारण कृष्ण है। मैंने कहा अगर आपको लगता है नींबू मिर्ची एक्सीडेंट की रक्षा कर सकते हैं, तो इतने सैनिक भारत में पाकिस्तान बॉर्डर पे मारे जाते हैं, सबके गले में नींबू मिर्ची क्यों नहीं टांगती सरकार अगर इसमें इतनी शक्ति है। कार खरीदते हैं महंगी 10 लाख की, पीछे एक फटी हुई चप्पल टांग देते हैं। वो मंदिर भी जाते हैं, मंदिर भी आते हैं, सोचिए आप। वो पूर्ण रूपेण शरणागति है ही नहीं, और नहीं है तो शुद्धिकरण भी नहीं है। ये यथाम माम प्रपद्धन्ते ताम ततैव भजामि हम, मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। जितनी प्रतिशत आप शरण में आएंगे उतने प्रतिशत शुद्धिकरण होगा, ज्यादा नहीं होगा। भगवान तो आपकी इच्छा से, सुहृदम सर्वभूतानाम है, सबकी इच्छा अनुसार जितना जितना चाहिए उतना देंगे। और एक व्यक्ति फोन किया, बोला कि प्रभु जी हमारे घर पे ना, हम भक्ति करते हैं, आस पड़ोस में जाते नहीं, जगरातों में साई बाबा कीर्तन में लोग हमसे द्वेष करने लगे हैं। अच्छा, अरे हमारे घर पे है ना गेट खोला आज सुबह सुबह, तो हल्दी की गांठे, मिर्ची, नमक और सामान पड़ा हुआ था कई सारा, तो क्या लगता है किसी ने ना हमारे के ऊपर ना कुछ टुटका कर दिया है, क्या करें अब? मैंने कहा अरे भाई आप भजन करो, हरे कृष्णा क्यों टेंशन लेते हो? कह रहे नहीं प्रभु जी फिर भी कुछ तो कुछ बताइए, कोई ज्योतिषी हो, कुछ हो। भक्त बनने के बाद भी ज्योतिषी बनने की इच्छा, भक्त बनने के बाद ज्योतिष के पास जाने की इच्छा, भक्त बनने के पास तांत्रिक के पास जाने की इच्छा, तो भक्त नहीं है, छोड़ दीजिए, सॉरी, भक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज वन साइडेड, या तो कृष्ण शरणागति या तो फिर भौतिक संसार की शरणागति। मैंने उनसे कहा एक काम करो, पर्ची पे लिखो और वहां पर एक पर्ची रख दो, नींबू मिर्ची उठा लो, हल्दी उठा लो, मिर्ची उठा लो। कहा क्या लिखते पर्ची पे? मैं कहा लिख दो टमाटर आलू भी दे दो, हम सब्जी बना लेंगे। सोचिए डरने की क्या बात है इसमें। बोले नहीं अगर कुछ हो गया तो, सर्व कारण कारण वो है, डरने की क्या आवश्यकता है? अकाम वा सर्व कामा मोक्ष कामा उदार दी, भगवान कह रहे हैं, फिर भी हम डर रहे हैं। हाँ, और भगवान के भक्त हैं अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद। प्रभुपाद जी नहीं डरते, अगर डरते होते तो कभी अपने बिजनेस को त्याग करने जाते। प्रभुपाद जी प्रयास किए कि कैसे भी कर अपने अपने गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए मैं धन अर्जित करूं, खूब धन अर्जित करूं, और भगवान चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे को निर्धन कर दूं। वो बार बार इलाहाबाद में बिजनेस लगाए, फ्लॉप हो गया, बॉम्बे में बिजनेस लगाए, वो भी फ्लॉप हो गया। तो सोचिए बार बार प्रयास कर रहे थे ज्यादा धन आएगा तो विदेश जाऊंगा और फिर सेवा करूंगा, अपने गुरु की प्रचार करूंगा, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करूंगा। भगवान का प्लान कुछ और था, भगवान चाहते थे कि तुम्हें निर्धन करके ले जाऊंगा और संसार को दिखाऊंगा भक्त बनने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। लंबी गाड़ी खरीद ली और उसमें मैं हर बार गाड़ी बदल रहा हूं हर साल, किसके लिए? भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, क्या आवश्यकता है? गोस्वामी ने कभी घर नहीं बनाया वृंदावन में, देखा है रूप गोस्वामी का घर? देखा है कभी? रोज अलग अलग पेड़ के नीचे बैठ करके भजन कर रहे हैं। लोग प्लानिंग करते हैं मैं जाऊंगा वृंदावन, वहां पे फिर 10 साल अपने रिटायरमेंट के गुजारूंगा। एक व्यक्ति ने ले लिया था घर वृंदावन में, बाद में क्या हुआ, जब बीमार पड़े तो उनके बच्चे उनको वापस अपोलो ले आए दिल्ली, और उनका शरीर अपोलो में छूट गया। तो फिर क्या हुआ, 10 वर्ष वृंदावन में रहे। और वहां जाकर टीवी भी लगाते हैं, गाड़ी भी रखते हैं, बोले जी आना जाना दिल्ली से आसान रहता है, क्या आवश्यकता है? या तो वृंदावन की चेतना लाओ ना। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में वृंदावन त्याग कर विदेश जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं वृंदावन ये चेतना का नाम है, वृंदावन जगह नहीं, वृंदावन चेतना है। वृंदावन में अगर चेतना वृंदावन नहीं तो वृंदावन जाना व्यर्थ है। वृंदावन चेतना अगर है तो फिर इसी जगह पर वृंदावन बन सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जय स्थान है वैष्णव गढ़ तेई स्थान है वृंदावन है। जहां वैष्णव नहीं है वहां वृंदावन है, जहां वैष्णव नहीं वहां वृंदावन नहीं है। तो फिर क्या आवश्यकता है हमें कि हम चेतना पर काम ना करके इधर उधर की चीजों में घूमते रहें। पुखराज पहनता है कोई, मोती पहनता है कोई, माणिक पहनता है, हाँ इस तरह की चीज है। अशिला प्रभुपाद जी 40 रुपए लेकर बोलते हैं, $5 लेकर विदेश गए। वो सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या थी, जब प्रभुपाद जी वापिस आए 1970 में, हाँ तो बताते हैं कि प्रभुपाद जी सबसे पहले छिपीवाड़ा मंदिर गए तो उनके पास टैक्सी में देने के लिए इंडियन रुपीस क्या थे, वही 40 रुपए। मतलब जब प्रभुपाद जी 40 रुपए कहें या $5 कहें, एक रुपया भी खर्च नहीं किए, हाँ उन 5 वर्षों में एक भी रुपया खर्च किए बगैर कई मंदिरों की स्थापना हो चुकी थी। ये कैसे हो पा रहा है? चेतना। हाँ प्रभुपाद जी देखते थे कि मंदिर में गंदगी है तो बोलते थे इस मंदिर के अंदर कोई लोग, सब लोग ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं। तो भक्त बोले जो मंदिर के अध्यक्ष थे, नहीं नहीं प्रभुपाद सब ध्यान पूर्वक जप करते हैं, आप आइएगा मॉर्निंग प्रोग्राम में सब करते हैं। प्रभुपाद बोले ठीक है दिखा देंगे। सुबह आए तो देखा वही भक्त निद्रालय में थे, जपालय में नहीं थे। तो प्रभुपाद बोले ध्यान पूर्वक जप नहीं करते इसीलिए इनसे गलतियां होती हैं, मंदिर में चीटियां घूम रही हैं, मंदिर में फूल माला जमीन पे पड़ी हुई हैं। हाँ तो अगर हम कोई भी सेवा करना चाहते हैं उसके लिए चेतना सबसे उत्तम होनी चाहिए। सारी चीजें त्याग दें बस कृष्ण शरणागत हो जाए। ऐसा ही एक कथा बताकर हम विराम देंगे। अब बनारस की एक कथा आती है। अब बनारस में एक व्यक्ति थे, वो जैसे गीता पांडा थे उड़ीसा में, ऐसे एक कथा आती है, लोक कथा है या पता नहीं, भक्त बताते हैं। तो वो भागवत का रोज अध्ययन करते थे काशी में बैठ करके गंगा के किनारे। और उनकी पत्नी जो थी, धर्म पत्नी तो नहीं थी, पत्नी थी क्योंकि धर्म पत्नी होती तो धर्म करने देती, वो रोज मना करती थी, कहाँ तुम चले जाते हो, ये सब काम करते हो, हाँ सारा दिन बच्चों की कोई तुम्हें फिक्र नहीं है, पढ़े हो तुम अपने हरि नाम में और भागवत में। हाँ एक दिन उनके घर में कोई संत आए, अतिथि आ गए। अभी एक गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि घर में अगर अतिथि आए बिना तिथि के तो उनको प्रसाद खिलाएं। हाँ प्रसाद नहीं है तो कम से कम जल दें, जल नहीं है तो कम से कम बैठने के लिए आसन दें। हाँ लोग अभी तो जाओ ना घर पे पूछते संत को देख करके, हाँ जी क्या काम है, वो जानते नहीं एक्चुअली। आजकल समाज वो पाप, हमने कहा ना पाप इतना बढ़ गया है कि संत का महत्व समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। तो इस तरह से उन्होंने के घर पे भी एक संत आए, लेकिन उन्होंने आसन दिया जल दिया लेकिन खाने के लिए प्रसाद के लिए कुछ नहीं था। तो उनके जो घर पे संत आए थे वो बोले कोई बात नहीं बेटी प्रसाद नहीं है, ठीक है मैं जाता हूँ, चले गए। जब वो चले गए तो उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया अपने पति पर, आज इतना क्रोध आया। उन्होंने उठाया भागवत को, और जो स्वयं भगवान कृष्ण है वो व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान की सेवा कर रहा है, उठाया उठा करके गंगा में फेंक दिया भागवत को, कहा ये रही तुम्हारे भगवान, ये रही तुम्हारी भागवत, जाओ। हाँ इसके लिए तुम क्या करते हो, समय बर्बाद करते हो। हाँ थोड़ा बहुत भिक्षा मांगने जाते थे, आजकल तो वो भी मांगना बंद कर दिया। आज पता है कितना बड़ा अपराध हुआ, संत घर आए थे और भूखे चले गए। अच्छा ऐसा अपराध हो गया मुझसे, तो उन्होंने कहा, और वो खूब बोलती रही और उन्होंने अपने कानों को अंदर से बंद कर लिया, सुना नहीं, और बड़े ही दुखी मन से भिक्षाटन करने के लिए चले गए। कहा चलो कुछ मांग कर लाता हूँ, घर में बच्चे भी भूखे हैं। और जब वो चले गए तो कुछ ही देर बाद क्या देखा, घर पे एक बच्चा आया, छोटा युवा बालक, जैसे दामोदर खड़े हैं सामने ऐसे ही श्यामल रंग का एक बच्चा आया। उसके वस्त्र पूरे भीगे हुए थे, हाँ, और उसने एक बहुत बड़ी टोकरी अपने सर पे उठाई थी। उस टोकरी में अन्न था, गेहूं था, चावल था, दालें थी, मसाले थे, सब्जियां थी, और कुछ स्वर्ण आभूषण भी थे। और कहा कि ये लीजिए माता, आपके प्रभु जी ने भिजवाया है। कहा कि अच्छा ये भिजवाया, कैसे, किसने? कहा आपके प्रभु जी जो है ना वो मेरे पिताजी की नौकरी करते हैं। हाँ कहा आपके पिताजी की मतलब? कह रहे हाँ मेरे पिताजी के नौकरी करते हैं, उन्होंने कभी बताया नहीं होगा, रोज 3 घंटे हमारे आते हैं, और उनको हम कहते थे ये ले जाओ अपना मेहनताना सैलरी, तो मना करते थे, कहते जब जरूरत पड़ेगी तब ले लूंगा। आज बहुत ही दुखी थे, बोले आज मुझे बहुत जरूरत पड़ गई है तो मेहनताना चाहिए, तो मैं मेहनताना देने आया हूँ। तो समझी नहीं, कहा ठीक है रख दो। उसके बाद जब प्रभु जी आए तो घर में स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे, और पूछा
कि अरे आज ही घर में इतने स्वादिष्ट व्यंजन खुशबू आ रही है, क्या हो गया? कहा जी आप भी मजाक करते हैं ना जी, आपने जो है छल किया मेरे साथ में, रोज नौकरी करते थे और इतने इतना सुनाती थी, कभी कुछ नहीं बोला, सच्चे संत हैं आप। लेकिन उसने कहा क्या क्या कौन कौन क्या हुआ, तो देखा तो टोकरी के अंदर एक पर्ची रखी थी। उस पर्ची पे, उस ताम्र पत्र पे, पत्ते के ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि दुनिया जब सैलरी लेने के लिए नौकरी करती है 8 घंटे तो हर महीने अपना मेहनताना मांगती है, और तुम मेरी रोज सेवा करते हो 3 घंटे, भगवान की भागवत पढ़ते हो 3 घंटे, तो क्या तुम्हारा मेहनताना पाने का कर्तव्य नहीं उठता है? तुम मांगोगे नहीं तो क्या मैं दूंगा नहीं? जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा, योग क्षेमम वहामि हम, जो तुम्हारा नहीं है वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा और जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा। भगवान ने तीव्रता से कहा इस बात को, उसके घर में सब कुछ प्रदान हुआ। और तो वो रोने लग गए और कहा कि ठाकुर जी आप कैसे हैं, आपका संबंध तो विचित्र है, ना मांगने पर भी, निष्काम भाव से भक्ति करने पर भी वो सब कुछ देंगे, लेकिन अगर आप लग जाएंगे ना छोटे मोटे डिस्टरबेंस में कि अरे मेरे में ये थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आई तो चलो क्या पता थोड़ा सा सोमवार की जगह बृहस्पतिवार का व्रत भी शुरू कर लूं, सोमवार भी कर लूं, थोड़ा दुर्गा चालीसा भी कर लूं। जैसे ही बदलेंगे पलटेंगे तो भगवान से बड़ा छलिया और कोई नहीं है, वो इसी संसार में छोड़ देंगे आपको। और मैंने ऐसे खुद ज्वलंत उदाहरण देखे हैं, जो लोग ब्रह्मचारी लाइफ में थे, एक भक्त मुझे मिले थे, वो अभी नोएडा में रहते हैं, एक दिन ऐसे गए थे कहीं प्रचार करने, कंठी माला धारण नहीं किए हुए थे, छुपा रखे थे, तो उनसे पूछा मैंने कि बोलते आप इस्कॉन के भक्त हैं, मैंने कहा गुरु महाराज, नाम बताया, अच्छा अच्छा, फिर बाद में कहते हैं मैंने भी दीक्षा ले रखी है, अच्छा दीक्षा ली है, तो फिर दाढ़ी बढ़ा रखी है, ऐसे ही शरीर पैंट शर्ट पहना है, अजीब सा तिलक भी नहीं लगाया, तो बोले मैं ना एक्चुअली मेरा विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद में मेरी पत्नी जो थी वो जो है वो भक्त नहीं थे, और बाद में क्या हुआ, भक्त पत्नी के ना होने के कारण उसने हमारे घर में जब संतान उत्पत्ति नहीं हुआ तो उसने अपने परिवार से डिस्कस किया और कहा 5 वर्ष बीत गए हमारे घर कोई संतान नहीं है, तो उनके परिवार वालों ने कहा हमारे बाबा को मानते, साईं बाबा, हमारे बाबा को मानते तो तुरंत हो जाता, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उसने पत्नी ने जोर जबरदस्ती करके ले जाना शुरू किया, मैं बाहर बैठ के जप करता था लेकिन जाता था, फिर हमारे घर में अब बिना भोग का प्रसाद वगैरह सब बनने लगा, और मैं क्या करता, बहुत लड़ाई झगड़े हुए लेकिन मैं नहीं संभाल पाया चीज़ों को, और क्या हुआ कि वो उसके जाने से 1.5 महीने बाद ही खबर आई कि माता जो है वो गर्भवती है, तो बोली अब तो और सुदृढ़ विश्वास हो गया उसको कि भैया बाबा की कृपा चल रही है। हाँ, और फिर उसके कारण हमारे घर में सब तस्वीरें हटा दी गई भगवान की और सब लग गया है। 1981 में दीक्षा लिए थे प्रभु जी, सोच लीजिए, बहुत पुराने भक्त हैं, और ऐसे भक्त आज भी नोएडा मंदिर आते हैं, कभी कभी कहते दीपदान कर लेता हूँ, छुप के चला जाता हूँ, लेकिन वो वाली चीज नहीं है, ना चेतना है, ना भक्ति है, ना घर पूरा खराब है, तो ये क्यों हुआ, गड़बड़ आ गए। अगर वो डिसीजन लेते प्रभुपाद जी की तरह, या तो आओ मेरे साथ में या तो मैं जाता हूँ, तो फिर कुछ नहीं होता, वो घबरा गए कि नहीं घर गृहस्थी संभालना, संभालने वाले वो हैं। भगवान के आगे लोग आते हैं रोने लग जाते हैं, भगवान भी कमर पे हाथ रख के कहते हैं संसार मैं चलाता हूँ, रोते तुम हो, है ऐसा लगता है तुम्हारी टेंशन तुम्हारे ऊपर है, चलाने वाला मैं हूँ, टेंशन तुम्हारी क्यों, तो निष्काम भाव होकर बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होकर हरि नाम को बोलते रहना चाहिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।